क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? कुछ ही प्रश्नों ने मानव कल्पना को इससे गहराई से छकछोरा है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जैसे ही हमने पहली बार रात्रि आकाश की ओर नजर उठाई, इसकी अपार विशालता ने एक उत्तर की मांग की। वह ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, वह समझ से परे विशाल है। सैकड़ों अरब आकाशगंगाएं, प्रत्येक में अरबों तारे और प्रत्येक तारा संभावित रूप से ग्रहों से घिरा हुआ। तर्क लगभग अपमानित लगता है इस सुझाव से कि जीवन, चेतना और जिज्ञासा की वह चिंगारी इस समस्त ब्रह्मांडीय प्रचुरता में केवल एक बार ही उभरी हो। और फिर भी विज्ञान, वास्तविकता को समझने का हमारा सबसे अनुशासित तरीका, ने बाह्य जीवीय जीवन के प्रश्न को उल्लेखनीय सावधानी के साथ, यहाँ तक कि संदेह के साथ व्यवहार किया है। अधिकांश क्षेत्रों में विज्ञान एक सरल और शक्तिशाली क्रम का पालन करता है, अवलोकन, परिकल्पना, खंडन। हम एक घटना का अवलोकन करते हैं, एक व्याख्या प्रस्तावित करते हैं और फिर उसे परीक्षण करते हैं। लेकिन जब बात ब्रह्मांड के अन्य भागों में जीवन की आती है, तो यह क्रम चुपचाप उलट दिया गया है। जीवन के संभावित होने की परिकल्पना करके और उस दावे को खंडित करने का प्रयास करने के बजाय, वैज्ञानिक मुख्यधारा ने अक्सर विपरीत रुख अपनाया है, मान लेना कि हम अकेले हैं जब तक कि निर्विवाद प्रमाण इसके विपरीत न साबित करें। यह उल्टाव कोई वैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत है। मानव इतिहास के अधिकांश भाग में हमारे विश्व दृष्टिकोण, दार्शनिक, धार्मिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक, ने मानवता को सृष्टि के केंद्र में रखा है। प्राचीन भू-केंद्रित ब्रह्मांड से लेकर मानव की अद्वितीयता पर धार्मिक जोर तक, हमने खुद को असाधारण, यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय रूप से एकमात्र मानने की कंडीशनिंग प्राप्त की है। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने लंबे समय पहले पृथ्वी को ब्रह्मांड के भौतिक केंद्र से हटा दिया है, लेकिन मानव केंद्रवाद की एक सूक्ष्म रूप अभी भी हमारे बौद्धिक प्रतिक्रियाओं में बनी हुई है। बाह्य जीवीय जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण की कमी को डेटा में एक अस्थायी अंतर के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि हमारे एकाकीपन की चुपचाप पुष्टि के रूप में। फिर भी तर्क, संभावना और वैज्ञानिक तर्क के सिद्धांत ही दूसरी दिशा की ओर इशारा करते हैं। वही रसायन विज्ञान जो पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न कर चुका है, सार्वभौमिक है। वही भौतिक नियम दूर की आकाश गंगाओं पर शासन करते हैं। जहाँ भी स्थितियाँ प्रारंभिक पृथ्वी की याद दिलाती हैं, तरल जल, स्थिर ऊर्जा स्रोत, कार्बनिक अणु, वहाँ जीवन का उदय चमत्कार नहीं बल्कि अपेक्षित है। इतने विशाल और विविध ब्रह्मांड में संभावनाएं अपार रूप से जीवन के कहीं और अस्तित्व का पक्ष लेती हैं, शायद सूक्ष्म जीवीय, शायद बुद्धिमान, शायद अविश्वसनीय रूप से विदेशी। इसलिए वास्तविक तनाव विज्ञान और अनुमान के बीच नहीं बल्कि तर्क और विरासत के बीच है। अपनी शुद्धतम रूप में विज्ञान को संभावनाओं के प्रति खुला होना चाहिए, प्रमाणों से निर्देशित, लेकिन ऐतिहासिक भावुकता या सांस्कृतिक आराम से सीमित नहीं। बाह्य जीवीय जीवन का प्रश्न न केवल हमारी तकनीक को चुनौती देता है, बल्कि हमारी जांच की दर्शन शास्त्र को ही। यह हमें सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हमारी मानवीय कहानी कितनी गहराई से अभी भी आकार देती है, कि हम खुद को क्या विश्वास करने की अनुमति देते हैं। आगे चलकर हम इस प्रश्न को वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक आयामों में खोजेंगे, रहने योग्य दुनिया के भौतिकी से लेकर भय की मनोविज्ञान तक, उन संख्याओं से जो साथी का वादा करती हैं तक, उस चुप्पी तक जो अभी भी हमें घेरे हुए है। गोल्डीलॉक्स जोन, दूरी से अधिक। जब खगोल शास्त्री किसी ग्रह की निवास योग्यता की बात करते हैं, तो अक्सर सबसे पहले जो शब्द आता है वह गोल्डीलॉक्स जोन है। सितारे के चारों ओर वह संकरी पट्टी जहां स्थितियां ठीक वैसी ही हैं कि ग्रह की सतह पर तरल जल मौजूद हो सके। सितारे के बहुत करीब और जल वाष्पित हो जाता है, बहुत दूर और जम जाता है। मात्रात्मक शब्दों में यह लगभग 1000 वॉट प्रति वर्ग मीटर तारकीय विकिरण के बराबर है, वह मात्रा जो पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। लेकिन यह सरल चित्र, हालांकि सुंदर, गहराई से अपूर्ण है। गोल्डीलॉक्स जोन सितारे के चारों ओर खींची गई एक एकल रेखा नहीं है, यह एक गतिशील बहुआयामी संतुलन है। निवास योग्यता न केवल इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रह कहाँ है, बल्कि क्या है इसकी द्रव्यमान, वायुमंडल, आंतरिक ऊष्मा और भूरासायनिक इतिहास। एक ग्रह सही दूरी पर चक्कर लगा सकता है और फिर भी पूरी तरह से असहनीय हो सकता है। उदाहरण के लिए शुक्र लें, हमारी कथित पहन ग्रह। यह सूर्य की शास्त्रीय निवास योग्य जोन के अंदर स्थित है। हमारी तारे से इसकी दूरी पृथ्वी से नाटकीय रूप से भिन्न नहीं है, और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ ने यहाँ तक कल्पना की कि इसके स्थायी बादलों के नीचे हरी भरी जंगल हो सकते हैं। वास्तविकता इससे अधिक अलग नहीं हो सकती। शुक्र बहुत अधिक द्रव्यमान वाला है और इसमें मोटा कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वायुमंडल है। यह घनावरण एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव के माध्यम से सौर ऊष्मा को फंसाता है, सतह के तापमान को लगभग 470 डिग्री सेल्सियस 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक धकेल देता है, इतना गर्म कि सीसा पिघल जाए। पृथ्वी के दबाव से 90 गुना अधिक कुचलने वाला वायुमंडलीय दबाव संवहन या विकिरण के माध्यम से किसी भी शीतलन को रोकता है। मूल रूप से शुक्र वह ग्रह है जो अपनी आदिम ऊष्मा को कभी अलग नहीं कर सका। इसकी आकार और वायुमंडलीय घनत्व ने इसे स्थायी बुखार में बांध दिया। शुक्र हमें याद दिलाता है कि जोन में होना तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक ग्रह के भौतिक पैरामीटर ऊष्मा को नियंत्रित करने के बजाय बढ़ावा न दें। इसलिए निवास योग्यता एकल मानदंड नहीं है, यह तारकीय इनपुट और ग्रहीय प्रतिक्रिया के बीच एक नाजुक अंतरक्रिया है। सौर आराम जोन की दूसरी ओर मंगल स्थित है, छोटा, ठंडा और उजाड़। पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल लगभग 1/10 होने के कारण मंगल में एक मोटे वायुमंडल को बनाए रखने की गुरुत्वाकर्षण की कमी है। अरबों वर्षों में सौर हवाओं ने इसकी गैसीय आवरण के अधिकांश भाग को छीन लिया, केवल कार्बन डाइऑक्साइड की एक पतली परत छोड़ दी। कम वायुमंडलीय इंसुलेशन के साथ सतह की ऊष्मा स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में भाग जाती है और ग्रह बड़े पैमाने पर जम गया है। विनोदी रूप से मंगल अपनी छोटी आकार के कारण पृथ्वी से तेजी से ठंडा हुआ। अपनी युवावस्था में इस तेजी से शीतलन का अर्थ था कि यह पृथ्वी से पहले निवासियों के चरण में प्रवेश कर चुका हो सकता है। भूवैज्ञानिक और रासायनिक प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं। प्राचीन नदी तट, डेल्टा और खनिज संरचनाएं कभी बहते जल की कहानी बताती हैं। आयरन ऑक्साइड्स, मूल रूप से जंग, की खोज हमें ऑक्सीजन चक्र और संभवतः जैविक गतिविधि के परोक्ष लेकिन प्रलोभक संकेत देती है। संक्षेप में, मंगल हमारी सौर मंडल में पहला वह विश्व हो सकता है जिसने जीवन को आश्रय दिया हो, भले ही केवल संक्षेप में। शुक्र के नरक और मंगल के गहरे हिमांक के बीच पृथ्वी स्थित है, वह संभाव्य मध्य भूमि जहां तापमान, द्रव्यमान और वायुमंडल लगभग पूर्ण संतुलन में संरेखित हैं। यह संतुलन नाजुक है, पृथ्वी के आकार, इसकी कक्षीय दूरी या हवा के संघटन को भी मामूली डिग्री तक बदल दें, तो जैसा हम जानते हैं वैसा जीवन के लिए स्थितियां गायब हो जाएंगी। यह जागरूकता ने सौर मंडल से परे जीवन की हमारी खोज को पुनः आकार दिया है। खगोल शास्त्री अब पृथ्वी समकक्षों की तलाश कर रहे हैं, वे ग्रह जो न केवल अपने तारों से सही दूरी पर हैं, बल्कि सही द्रव्यमान, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और आंतरिक गतिशीलता के साथ भी। आदर्श ग्रह को सही दर से ठंडा होना चाहिए, ज्वालामुखी और प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से अपनी गैसों को पुनर्चक्रित करना चाहिए और जीवन के उदय के लिए पर्याप्त लंबे समय तक स्थिर जलवायु बनाए रखनी चाहिए। अन्य शब्दों में, निवास योग्यता ग्रह की कक्षा की निश्चित संपत्ति नहीं है, यह एक विकसित अवस्था है, ब्रह्मांडीय संतुलन और भूवैज्ञानिक समय का उत्पाद। हमारी अपनी सौर मंडल की शिक्षा विनम्र करने वाली है। तीन स्थलीय ग्रहों में से जो लगभग समान सामग्रियों और कक्षाओं से शुरू हुए थे, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, आज केवल एक ही निवास योग्य बची है। अन्य गोल्डिलॉक्स जोन में होने की पाठ्यपुस्तक परिभाषा को पूरा करने के बावजूद अपने ही भौतिक पैरामीटर्स के शिकार हो गए। यदि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है तो यह उन दुनियाओं में निवास करता होगा जहां असंख्य ऐसे कारक संरेखित हुए हों, वे दुनिया जो पृथ्वी की तरह बहुत अधिक और बहुत कम, बहुत गर्म और बहुत ठंडा, बहुत छोटा और बहुत बड़ा के बीच उस क्षणिक संतुलन को पा और बनाए रख सकी हों। इसलिए गोल्डिलॉक्स जोन केवल अंतरिक्ष में एक स्थान नहीं है, यह तारे और ग्रह के बीच, ऊर्जा और पदार्थ के बीच सामंजस्य की अवस्था है और शायद संयोग और अपरिहार्यता के बीच। ब्रह्मांड की अपारता। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में 200 से 400 अरब तारे हैं और लगभग सभी में ग्रह हैं। भले ही इन तारों का केवल 1% ही पृथ्वी जैसी दुनिया रखता हो, तब भी हमारी आकाशगंगा में ही जीवन के लिए अरबों संभावित आश्रय मिल जाते हैं। इसके परे अवलोकनीय ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। संख्याएं समझ से परे हैं और उनके साथ पृथ्वी के अद्वितीय होने की संभावना अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। कोपरनिकस सिद्धांत हमें बताता है कि हम केंद्रीय नहीं हैं, सांख्यिकीय रूप से हम असाधारण भी नहीं हैं। फिर भी हमने कहीं और जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया है। वह अपारता जो जीवन को संभावित बनाती है उसे अस्पष्ट भी बनाती है। यहां तक कि हमारे निकटतम पड़ोसी प्रोक्सिमा सेंटरी 4 प्रकाश वर्ष दूर के लिए भी एक पृथ्वी जैसा ग्रह अपने तारे से अरबों गुना मंद दिखाई देगा, एक चमकदार कीड़ा जो एक सर्चलाइट के चारों ओर घूम रहा हो। इस अपारता में चुप्पी आश्चर्यजनक नहीं है, यह अपेक्षित है। तारों की सुनना। यदि कहीं और जीवन संभावित है तो बुद्धिमान जीवन, संचार करने योग्य, ने निशान छोड़ दिए होने चाहिए। इस आशा ने बाह्य जीवीय बुद्धि की खोज SETI को प्रेरित किया, प्रकृति द्वारा कभी न उत्पन्न रेडियो सिग्नलों के लिए आकाश की स्कैनिंग। 20वीं शताब्दी में पृथ्वी स्वयं एक रेडियो बीकन थी। टेलीविजन, रेडार और रेडियो ट्रांसमीटर ने मेगावाट सिग्नल अंतरिक्ष में फेंके जो प्रकाश वर्षों दूर से आसानी से पता लगाने योग्य थे। सेटी के प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने माना कि अन्य सभ्यताएं भी ऐसा ही कर सकती हैं, इसलिए 1420 मेगाहर्ट्ज पर हाइड्रोजन लाइन के पास संकुचित बंद सिग्नलों की खोज। लेकिन हमारा ग्रह शांत हो रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स, उपग्रह और डिजिटल नेटवर्क ने उच्च शक्ति प्रसारण को बदल दिया है। जो कभी एक चमकदार ग्रहीय चीख था, वह अब फुसफुसाहट है। हमारी सभ्यता की रेडियो चरण शायद मुश्किल से एक शताब्दी तक चले, ब्रह्मांडीय समय में एक झपकी। यदि अन्य इसी तरह विकसित होते हैं, तो उनके पता लगाने योग्य खिड़कियां हमारी से कभी ओवरलैप न हों। हम आवाजों से घिरे हो सकते हैं, लेकिन गलत समय पर बोलने वाली, गलत तरीके से, उन चैनलों पर जो हम अब साझा नहीं करते। अंधेरे में आवाजों की गिनती। 1961 में खगोलशास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक ढांचा प्रस्तावित किया कि हमारी आकाशगंगा में कितनी संचार करने योग्य सभ्यताएं हो सकती हैं। एन इक्वल्स आर अंडरस्कोर टाइम्स एफ अंडरस्कोर पी टाइम्स एन अंडरस्कोर ई टाइम्स एफ अंडरस्कोर एल टाइम्स एफ अंडरस्कोर आई टाइम्स एफ अंडरस्कोर सी टाइम्स एल। प्रत्येक पद क्षेत्र को संकीर्ण करता है, तारों के निर्माण की दर आर से ग्रहों वाले अंश एफ पी तक, निवासियों के जोनों में नी तक, उन ग्रहों तक जहां जीवन उत्पन्न होता है एफ एल, बुद्धिमत्ता विकसित होती है फाई, प्रौद्योगिकी उभरती है एफ अंडरस्कोर सी, और अंत में ऐसी सभ्यताएं कितने समय तक पता लगाने योग्य रहती हैं एल। ड्रेक का प्रारंभिक आशावाद मानता था कि सभ्यताएं शक्तिशाली रेडियो सिग्नल प्रसारित करेंगी, शायद सहस्राब्दियों तक। लेकिन हमारी अपनी उच्चारित चरण पहले से ही फीकी पड़ रही है, और अंतिम पद एल, पता लगाने की अवधि, दुखद रूप से छोटा हो सकता है। यदि हमारी खिड़की केवल कुछ सौ वर्षों की है अरबों वर्ष पुरानी आकाशगंगा में, तो आश्चर्य नहीं कि हमने अभी तक कोई अन्य आवाज नहीं सुनी। यह समीकरण कभी अंतिम संख्या देने के लिए नहीं था। यह हमें याद दिलाने के लिए था कि हम क्या नहीं जानते, और दिखाने के लिए कि अनिश्चितता में भी ब्रह्मांड संभवतः उन दूसरों से भरा है जो हमारी तरह सुने जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरे में चिल्लाना। दशकों तक हमारा रेडियो रिसाव आकस्मिक था, संचार का अनपेक्षित उत्पाद। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने मीति मैसेजिंग एक्स्ट्राटेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस का प्रस्ताव किया है, निकटवर्ती तारों को जानबूझकर शक्तिशाली सर्जित सिग्नल भेजना, घोषणा करना कि हम यहां हैं। समर्थक तर्क देते हैं कि चुप्पी आत्म पराजी है, कि यदि सभी सुनते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं, तो आकाशगंगा हमेशा के लिए मूक रहेगी। आलोचक, हालांकि, खतरे की चेतावनी देते हैं, हम नहीं जानते कि कौन सुन सकता है। स्टीवन हॉकिंग द्वारा व्यक्त सावधानी कि अंधेरे जंगल में चिल्लाना क्या शिकारियों को आमंत्रित करता है, एक बहुत पुराने भय को प्रतिध्वनित करती है कि असमान शक्तियों के बीच संपर्क कमजोर के लिए बुरी तरह समाप्त होता है। यह बहस एक गहन द्वंद्व प्रकट करती है। हम जानना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, फिर भी जाना जाने का जोखिम लेने में संकोच करते हैं। हमारी प्रौद्योगिकी हमें ब्रह्मांडीय संचार के लिए सक्षम बनाती है, लेकिन हमारी इतिहास हमें सतर्क। प्रश्न अब यह नहीं है कि क्या हम संदेश भेज सकते हैं, बल्कि क्या हम भेजना चाहिए। शक्ति और भय पर चिंतन। हमारा बाहर पहुंचने में संकोच अंधविश्वास से नहीं, बल्कि स्मृति से जन्मा है। जब हम डरते हैं कि विदेशी संपर्क विजय की ओर ले जा सकता है, तो हम वास्तव में अपनी अपनी अतीत को याद कर रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के अज्ञात से सामना, मूल अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग, औपनिवेशिक शासन के तहत अफ्रीकी और आज फिलिस्तीनी लोग एक सुसंगत पैटर्न प्रकट करते हैं, प्रबोधन के रूप में उचित ठहराई गई प्रभुत्व, नियंत्रण में बदल गई जिज्ञासा। खोज की भाषा ने अक्सर शोषण की वास्तविकता को छिपाया है। इस प्रकार जब हम विदेशियों को विजेता के रूप में कल्पना करते हैं, तो हम खुद को ब्रह्मांड पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वे अन्य जिनसे हम डरते हैं, वे हैं जो हम कभी थे। हमारा भय एक दर्पण है। संपर्क की नैतिकता इसलिए पृथ्वी पर शुरू होती है। तारों के बीच किसी अन्य बुद्धिमत्ता से मिलने से पहले हमें एक दूसरे से गरिमा के साथ मिलना सीखना होगा। ब्रह्मांडीय संगति के लिए हमारी तैयारी का मापदंड हमारी सहानुभूति की क्षमता है, हमारी प्रौद्योगिकी नहीं। शायद ब्रह्मांड चुप रहा है न इसलिए कि यह खाली है, बल्कि इसलिए कि जो सभ्यताएं संचार करने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक जीवित रहती हैं, उन्होंने विवेक, धैर्य और विनम्रता सीख ली है। यदि ऐसा है, तो चुप्पी बुद्धिमत्ता का कार्य हो सकती है। लौटाया गया संदेश। सभी संभावनाओं और भयों के बाद हम एक अधिक आशावादी दृष्टि पर पहुंचते हैं, एक जो काल सागन के कॉन्टैक्ट में कैद है। जब वेगा से एक संरचित सिग्नल आता है, तो मानवता सीखती है कि वह अकेली नहीं है। संदेश में एक मशीन बनाने के निर्देश शामिल हैं, जो एकमात्र यात्री डॉक्टर एली इरोवे को वर्महोल्स के नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करने और प्रेषकों से मिलने की अनुमति देता है। मुलाकात विजय नहीं, बल्कि बातचीत है, चेतावनी नहीं, बल्कि आलिंगन। एरोवे की कहानी हमारे सर्वश्रेष्ठ को मूर्त रूप देती है, विनम्रता से संयमित साहस, आश्चर्य से निर्देशित तर्क। वे विदेशी जिनसे वह मिलती है प्रभुत्व नहीं करते, वे मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर जीवित रहना शक्ति पर नहीं बल्कि सहयोग पर निर्भर हो सकता है। उनका संदेश सरल है, हम सभी ने संघर्ष किया है, हम सभी ने सहन किया है, आप अकेले नहीं हैं। एली एरोवे डॉक्टर जिल टाटर से प्रेरित थी, एक वास्तविक खगोलशास्त्री जिन्होंने सेटी इंस्टीट्यूट की सह स्थापना की और अपनी करियर तारों के बीच आवाजों को सुनने के लिए समर्पित की। सागन टाटर को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और एरोवे की बुद्धिमत्ता और दृढ़ता को उन पर आधारित किया। उस समय जब विज्ञान में महिलाओं को अपार बाधाओं का सामना करना पड़ता था, टाटर की दृढ़ता स्वयं एक शांत क्रांति का कार्य थी। उन्होंने एक बार कहा था, हम वह तंत्र हैं जिसके माध्यम से ब्रह्मांड खुद को जान सकता है। यह वाक्य उनके कार्य और सागन की दृष्टि के हृदय को कैद करता है कि दूसरों की खोज ब्रह्मांड के लिए भी एक तरीका है कि वह हम में से स्वयं को जागरूक बने। सागन की कहानी और टाटर का जीवन हमारी चिंताओं के लिए एक विकल्प प्रदान करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि ज्ञान और सहानुभूति साथ साथ विकसित हो सकते हैं, कि तारों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यताओं को पहले करुणा सीखनी होगी। शायद वह चुप्पी जो हम सुनते हैं खालीपन नहीं बल्कि कृपा है, सभ्यताओं का सम्मानजनक मौन जो इंतजार कर रही है कि हम पर्याप्त बुद्धिमान हो जाएं ताकि बातचीत में शामिल हों। हर दूरबीन जो आकाश की ओर मुड़ी है वह अंदर की ओर प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण भी है। दूसरों को सुनते हुए हम खुद में सर्वश्रेष्ठ को सुनते हैं। आशा की बुद्धिमत्ता दया के साथ सह अस्तित्व कर सकती है कि जीवन उत्तरजीविता से परे अर्थ तक पहुंच सकता है। यदि ब्रह्मांड कभी जवाब देता है तो शायद निर्देशों या चेतावनियों से नहीं बल्कि पुष्टि से। आप कुछ बड़े का हिस्सा हैं, सुनते रहें। चाहे सिग्नल कल आए या हजार वर्षों में, खोज स्वयं हमें पहले से परिभाषित कर चुकी है। यह साबित करता है कि अपने छोटेपन में भी हम आशा करने का साहस करते हैं, क्योंकि प्रश्न क्या हम अकेले हैं कभी वास्तव में उनके बारे में नहीं था। यह हमेशा हमारे बारे में था, हम कौन हैं और हम अभी भी कौन बन सकते हैं।